हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर ध्रुव से मिलने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन दक्ष उसका पीछा कर रहा था। मेहर ने हेल्प के लिए ध्रुव को कॉल किया तो ध्रुव ने उसे एक सुनसान इलाके में बुलाया ताकि वो उसके पीछा करने वाले इंसान से निपट सके। दक्ष पहले ही सब प्लान करके आया था, वो समझ गया था कि मेहर उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। जंगल में जाने से पहले ही दक्ष ने मेहर का रास्ता रोक लिया था और उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। इस बीच ध्रुव भी वहां पर पहुंच गया था। ध्रुव अकेला था, लेकिन दक्ष अपने आदमियों के साथ आया था जिन्होंने इस वक्त ध्रुव को घेर कर रखा था। दक्ष के इशारे भर की देर थी और वो लोग ध्रुव को गोलियों से भून डालते। ध्रुव को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर मेहर ने मायूसी से ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आदमियों के साथ आया है, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गए। मेहर को ध्रुव की परवाह करते देखकर दक्ष को और गुस्सा आने लगा। वो मेहर के पास गया और कड़वाहट से बोला, बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर, तुम दोनों की सगाई हुए 10 दिन हुए हैं, उतने में ही इसकी इतनी फिक्र, जबकि मैं इतने सालों से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, मेहर ने गुस्से में तेज आवाज में कहा। ओ रियली, नो, आई विल प्रूव यू मेरे अंदर बात है या नहीं, दक्ष ने सिर हिलाकर कहा और फिर ध्रुव के पास आकर सर्द आवाज में बोला, अब मेरी फ्यूचर वाइफ को तुम्हारी इतनी ही परवाह है तो मैं उसे इस तरह टेंशन में तो नहीं देख सकता ना, चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना आगे क्या होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें तो ठीक से धमकी देना भी नहीं आता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो या फिर खुद को तसल्ली कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा दक्ष मल्होत्रा, ध्रुव ने प्लेफुल वे में कहा। बस मुझे तुम्हारी इसी ओवर कॉन्फिडेंस से नफरत है, यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे बाप में था और यही तुम्हारे अंदर है, दक्ष ने चिढ़कर जवाब दिया। हाँ, बाप के जीन्स बेटे में तो आएंगे ही ना, अब खुद को ही देख लो, तुम्हारा बाप मेरे डैड के सामने कमजोर था और तुम मेरे आगे, ध्रुव ने दक्ष को उकसाने के लिए कहा। मतलब मानना पड़ेगा, मौत सर पर खड़ी है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी करनी है, दक्ष ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा तो ध्रुव ने कंधे उचका दिए। दक्ष की उम्मीद के विपरीत ध्रुव की आंखों में डर तो बिल्कुल नहीं था। ध्रुव ने एक नज़र चारों तरफ देखा, उसके सामने लगभग 15 आदमी खड़े थे जो उसे गन पॉइंट पर लेकर खड़े थे। उसके पास भी गन थी लेकिन ध्रुव ने अपनी गन वेस्ट बैंड में डाल रखी थी। ध्रुव ने अपनी आंखें कसकर बंद की, उसकी आंखों के सामने कृषा और युग का चेहरा आ रहा था और युग की कही कुछ बातें, ये हमेशा याद रखना बेबी डेविल, मौत से भी ज्यादा डरावना मौत का डर होता है, अगर तुम्हारे सामने मौत भी खड़ी हो तो घबराना मत, उसका भी आंखों में आंखें डालकर सामना करना, अगर तुम डर गए तो किसी के मारने से पहले ही मर जाओगे, याद रखना तुम किसके बेटे हो, मौत से कोई इंसान नहीं जीत पाया है, वो एक दिन सबको आनी है, लेकिन हाँ ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसी मौत चुनते हैं, एक कायर की मौत या एक हीरो की मौत, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना। यही कुछ शब्द थे जो युग जब भी ध्रुव की ट्रेनिंग करता तो उसे बार बार कहता था। जब ध्रुव छोटा था तो उसे ये समझ नहीं आता था कि युग उसे बार बार ये क्यों समझा रहा है, बड़े होने पर उसे सब समझ आ गया और बहुत बार उसका इन हालातों से सामना भी हुआ। वहीं ध्रुव की आंखें बंद देखकर दक्ष ने मेहर से मुस्कुराते हुए कहा, देखा मरने से पहले अपने मॉम डैड को याद कर रहा है, मुझे तो वो लम्हा सोचकर ही खुशी हो रही है जब भी इसका बाप इसकी लाश को देखेगा, एक बात तो तय है आंसू नहीं होंगे उसकी आंखों में, लेकिन मैं इसकी माँ का सोच रहा हूँ, अगर उसने इसकी ला। दक्ष की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके नाक पर एक जोरदार पंच पड़ा, दक्ष के नाक से खून बहने लगा था तो वहीं ध्रुव सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। कहा ना अपने गंदे मुंह से उनका नाम भी मत लेना, ध्रुव ने बेहद शांत आवाज में कहा। ध्रुव की इस हरकत पर दक्ष बहुत गुस्सा हो गया था, उसने अपनी नाक का खून साफ करते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम लोग खड़े हुए क्या देख रहे हो, शूट कर दो इसे। दक्ष के ऑर्डर देते ही उसके गार्ड्स हरकत में आ गए थे, लेकिन उनके सामने भी ध्रुव खड़ा था, उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। वो लोग अपनी गन लोड करने में लगे थे, उतने में ही तेजी दिखाते हुए ध्रुव ने दक्ष को गन पॉइंट पर ले भी लिया था। बहुत ही सस्ते और अजीब आदमी हायर किए हैं तुमने, पता है यही फर्क है तुम बिजनेस माफिया और हम माफिया में, तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोग बस सिक्योरिटी का काम करते हैं और हमारे लिए काम करने वाले लोग ट्रेंड होते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी होती तो ये यहाँ खड़े होकर तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार नहीं कर रहे होते, ध्रुव ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष भी कम नहीं था, उसने अपने पॉकेट से छोटा नाइफ निकाला और ध्रुव के राइट आर्म में घुसा दिया था। ध्रुव को दर्द हो रहा था, उसकी आंखें गीली होने लगी थीं, लेकिन फिर भी उसने दक्ष को नहीं छोड़ा था। दक्ष के इस हरकत से ध्रुव भी गुस्सा हो गया था, उसने दक्ष के राइट आर्म के पास फायर किया, गोली उसे छूकर निकली थी पर उसे घायल करने के लिए काफी थी। दक्ष दर्द से जोर से चिल्लाया। ध्रुव ने फिर उसके आदमियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को यहाँ फाइट करनी है या फिर इसे जिंदा सही सलामत लेकर जाना है, ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला तुम लोगों पर काफी हूँ, खुद को साबित भी कर सकता हूँ, बशर्ते तुम सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ध्रुव खोखली धमकी नहीं दे रहा था, दक्ष के आदमी पूरी तरह से तैयार थे। उनके लीडर ने दक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा सर, बस आप हमें ऑर्डर दीजिए। क्या लगता है कि ये ऑर्डर देने की हालत में है, मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा इसे शूट करने में। ध्रुव ने वार्निंग टोन में कहा और फिर गन को दक्ष के गले पर रखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई थी। मेहर इन सब में घबराई हुई वहां पर खड़ी थी। उसने दक्ष से कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन पूछी भी नहीं है मेहर रायचंद। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, चाहे तुम अपनी मर्जी से करो या मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। दक्ष ने जवाब दिया। कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था, ना ही ध्रुव और ना ही दक्ष के आदमी। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करके खोली और फिर अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए कहा, ठीक है फिर, यही सही। इतना कहकर उसने मेहर से कहा, मेहर गाड़ी खोलो और ड्राइव करो। सोचा नहीं था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इस आदमी का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव राणा, दक्ष ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पर ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेहर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। बैक सीट पर ध्रुव दक्ष को लेकर बैठ गया। दक्ष के आदमियों ने उसके पीछे आने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उनकी आंखों के आगे से गायब थे। ध्रुव के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने दक्ष से कहा, सो तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है मिस्टर मल्होत्रा? अपने शिकार को ऐसे ही जाने जोगे ध्रुव राणा, मैंने तुम्हें अकलमंद समझा था। आज अच्छा मौका है जब तुम मेरी जान ले सकते हो, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, दक्ष ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। बिल्कुल, मुझे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। दक्ष आगे कुछ कहता उससे पहले ध्रुव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने दक्ष को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। दक्ष इस वक्त रोड से ज्यादा दूर नहीं था।
दक्ष नीचे गिरे हुए ध्रुव को मेहर के साथ जाते हुए देख रहा था। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने ध्रुव मेहर को लेकर चला गया और वो कुछ नहीं कर पाया। दक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव राणा। आज जो तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, इसका पछतावा तुम्हें आखिरी दम तक होगा। दक्ष वहां से उठकर मदद लेने के लिए जाने लगा। उस इलाके से थोड़ी दूर ध्रुव ने मेहर को वहीं लेकर गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। ध्रुव को चाकू लगा था ये मेहर ने नहीं देखा था, हालांकि गाड़ी में बैठते वक्त उसने वो चाकू निकालकर फेंक दिया था। मेहर की गाड़ी रोकने पर ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला और गहरी सांस लेने लगा। मेहर उसके पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर कैरिंग वे में कहा, मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया ना, सब मेरी गलती है। मुझे बिना सिक्योरिटी के नहीं आना चाहिए था, किसी और को ना सही, एटलीस्ट तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही काफी है। आगे से प्लीज ऐसी हरकत मत करना, एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर प्रॉब्लम में आए, ध्रुव ने इंटेंस वॉइस में कहा। ध्रुव ने पहली बार मेहर को अपनी फैमिली का हिस्सा बताया था और उसकी टोन में मेहर के लिए फिक्र भी जाहिर हो रही थी। ये देखकर मेहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वरना ध्रुव का कोल्ड बिहेवियर देखकर उसे यही लगता था कि वो सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उससे शादी कर रहा है। तो तुम मुझे अपनी फैमिली मानते हो? मेहर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या ये मिलना जुलना जरूरी होता है मेहर? ध्रुव ने भौंहें उठाकर पूछा। हाँ जरूरी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बस तुम्हें करीब से महसूस करना चाहती हूँ, यही सोचकर तुमसे मिलने के लिए आ जाती हूँ, मेहर ने जवाब में कहा। ध्रुव मेहर की फीलिंग्स को समझ सकता था, हालांकि उसने कभी किसी से इस तरह प्यार नहीं किया था और ना ही कभी किसी से मिलने के लिए डेस्परेट हुआ था, सिवाय अपनी फैमिली के। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ पल रुककर कहा, अगर ऐसा ही है तो चलो फिर शादी कर लेते हैं, साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को जान जाएंगे और तुम्हें इस तरह मुझसे मिलने के लिए बहाने बनाकर नहीं आना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर मेहर हल्का सा हंसी और फिर बोली, अरे नहीं, मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है फिर ऐसा करते हैं, आगे से मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा पर तुम नहीं आओगी। आज तुम्हें फ्री था, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं काम में फंसा हूं और तुमसे मिलने ना आ सकूं, ऐसे में तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। ध्रुव ने मेहर को समझाने की कोशिश की और वो समझ भी गई थी। मेहर ने बिना किसी जिद के ध्रुव की बात मान ली थी। कौन कह सकता था कि ये वही मेहर रायचंद है जो इतने नाजों से पाली गई थी कि उसने कभी किसी की नहीं सुनी थी। आज वो अपने से कम उम्र के लड़के की सुन भी रही थी और इसे समझना भी चाहती थी। मेहर ध्रुव के करीब आई, उन दोनों के नोज आपस में टच हो रहे थे। मेहर ने धीमी आवाज में कहा, पता है जब तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही थी तो दिल में यही ख्याल आया था कि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी हो पाएगी या नहीं, पर आई मस्ट से तुम बहुत मैच्योर हो, मेरी इमेच्योरिटी को सहने के लिए तैयार रहना ध्रुव राणा, हमेशा, ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। पहली बार मेहर ने ध्रुव के चेहरे पर जेन्युइन छोटी स्माइल देखी थी। मेहर और ध्रुव के होठों के बीच थोड़ी ही दूरी थी, वो उसके और करीब आ रही थी।
लेकिन ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। न जाने क्यों एक पल के लिए उसे मेहर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। क्या ध्रुव मेहर को अपने दिल में जगह दे पाएगा? ध्रुव तारा या ध्रुव मेहर, कौन साथ में ज्यादा अच्छा लगता है?